उनका संबंध जरूर है। किनका? देवी देवताओं का और भक्तों का। उस माता पिता से संबंध जरूर है। एक होता है संपर्क और एक होता है संबंध। संबंध माने क्लोज कांटेक्ट, संपर्क ऊपर ऊपर का होता है और संबंध होता है गहराई। एक होता है लौकिक संबंध और दूसरा होता है पारलौकिक संबंध। लौकिक संबंध तो अनेक प्रकार के हैं, काका चाचा मामा आदि आदि, वो है लौकिक बंधन। इसलिए अर्थात बंधन से छूटने के लिए परमपिता परमात्मा को बुला दें। ये तो बच्चों को मालूम है, सत्युग में कोई बंधन नहीं होता। बाप को बुलाते हैं कि हम अभी बंधन में हैं। आपके संबंध में आना चाहते हैं। बुलाने वालों में और जिसको बुलाया जा रहा है, उन दोनों में अंतर क्या बताया? बुलाने वाले बंधन में हैं और जिसको बुलाते हैं वो निर्बंधन है। जो बंधन में है वो निर्बंधन के संबंध में आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि निर्बंधन का संग का रंग लगेगा तो वो भी निर्बंधन बन जाएंगे। बच्चों को याद है हम अनेक प्रकार के बंधनों में हैं। देह का सिमरण होने के कारण बंधन बहुत है। देही के संबंध से एक ही माता पिता याद रहता है। लौकिक और पारलौकिक को याद करने में रात दिन का फर्क है। ये है जिस्मानी बंधन। और पारलौकिक है रूहानी बंधन, संबंध। उसे बंधन नहीं कहेंगे क्योंकि बंधन से होता है दुख और संबंध से होता है सुख। तो वो है रूहानी संबंध, उनको बंधन नहीं कहेंगे। जिस्मानी संबंध में कथित में रहते हैं क्योंकि वहाँ सुख का संबंध कहेंगे या फिर दुख का बंधन कहेंगे, उनको संबंध नहीं कहेंगे। इन बातों का आगे पता नहीं था, अब समझ गए हो। पुकारते जरूर थे हे माता पिता, बाप तो जरूर सबको सुख ही देंगे, परंतु बाप क्या सुख देते हैं ये किसी को पता नहीं। अभी बाप से संबंध है, उनसे सदा सुख मिलेगा। सुख को संबंध और दुख को बंधन कहेंगे। तो बच्चे माता पिता को बुलाते हैं कि आकर के और ऐसे मीठी मीठी बातें सुनाओ, अथवा तो इनडायरेक्ट बुलाते हैं। बच्चे लोग और तुम डायरेक्ट बुलाते हैं। वो भी याद करते हैं हे परमपिता परमात्मा, कौन भक्त लोग लेकिन वो इनडायरेक्ट बुलाते हैं और तुम डायरेक्ट बुलाते हो। पिता है तो जरूर माता भी होनी चाहिए, नहीं तो बाप क्रिएट कैसे करेंगे। तो बाबा को बच्चे चिट्ठी कैसे लिखेंगे, ऐसे तो वो पढ़ ही नहीं सकते। के बगैर माता के बगैर चिट्ठी पढ़ ही नहीं सकते, तो जब चिट्ठी पढ़ नहीं सकते तो जवाब कहाँ से देंगे। शिव बाबा भी यहाँ बैठे हैं इसलिए लिखते हैं शिव बाबा के रस ब्रह्म। शिव बाबा कोई तो शरीर जरूर धारण करते हैं, जाते भी आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल सचिव उसको कहा जाता है। वो है सर्व का सदगति दाता जिसे कहते हैं सतगुरु, वो आकर के शरीर में प्रवेश करते हैं। फिर उनको 84 जन्म बैठ बतलाते हैं, ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है। गायन सब किस समय के, तो गाया हुआ है तो जरूर साबित होता है कि संगम युग की ही यादगार है। जो शास्त्र में लिखा है ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, बाकी कोई सत्युग त्रेता को ब्रह्मा का दिन नहीं कहेंगे और न द्वापर कलयुग को ब्रह्मा की रात कहेंगे, क्योंकि वहाँ तो ब्रह्मा या ब्राह्मण होते ही नहीं। तो ब्रह्मा की रात या ब्रह्मा का दिन या ब्राह्मणों का दिन का सवाल ही, ये तो संगम युग में ही जब परमपिता परमात्मा साकार में ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं तो ब्रह्मा का दिन है। और जब गुप्त हो जाते तो ब्रह्मा की रात होती। पहले है परमपिता परमात्मा रचयिता, वो रचयिता किसको रचते हैं, रचयिता रचते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को। फिर सबको वापस जाना है तो जरूर पहले पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर जाएंगे, क्योंकि तो दिन और रात हो नहीं सकते दिनों के ब्रह्मा विष्णु शंकर के। क्यों, क्योंकि सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु या शंकर ये तो फर्श की दुनिया के रिश्तों से परे है। और जो संबंध नहीं है देह के तो उनकी रात कहाँ से होगी। तो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गायी हुई है संगम युग में, इस सृष्टि की यादगार है साकार सृष्टि की। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा की यादगार नहीं है, वो तो है फरिश्तों की दुनिया जहाँ रोशनी ही रोशनी है। बरोबर परमपिता परमात्मा ब्रह्मा की रात को फिर ब्रह्मा का दिन बनाने आते हैं। तो कब की बात हुई, ब्रह्मा की रात कब कहें। ब्रह्मा ने जब शरीर छोड़ा तो ब्रह्मा की रात जिसकी यादगार माउंट आबू में सनसेट पॉइंट बना, क्योंकि सूर्य जब छुप जाता है तभी रात होती है। तो बरोबर परमपिता परमात्मा ब्रह्मा की रात को फिर ब्रह्मा का दिन बनाने आते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का दिन, तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी दिन हो पड़ता है। दिन कहा जाता है सत्यपुत्री का, रात द्वापर कलयुग को कहा जाता है। तो द्वापर कलयुग 2500 वर्ष वाले या शूटिंग पीरियड का, अभी तुम बच्चे आए हो बाप के स्वर का वर्तन है, तो कोई गाते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव, जिनसे स्वर्ग के सुख घनेरे मिलते हैं। तो गाते हैं तुमेव माता च पिता, कथा रूप में लिखते हैं, हल के रूप में आकर के बहलाते हैं। मुख्य तो है तीन संबंध, बाप ईश्वर और सतगुरु, और इनसे ही फायदा है। बाकी काका चाचा मामा आदि संबंधों की कोई बात नहीं है। तो संपूर्ण बाप जो है वो आकर के बच्चों को संपूर्ण बनाते हैं। आते हैं इसका मतलब यहाँ नहीं थे, कौन संपूर्ण बाप। तो अपूर्ण बाप कौन हुआ, ब्रह्मा तो माँ ही है, ब्रह्मा माने बड़ी माँ। अपूर्ण बाप कौन हुआ, प्रजापिता। तो संपूर्ण बाप जो है वो आकर के बच्चों को संपूर्ण बनाते। सोलह तला संपूर्ण तुम बन रहे हो, तुम अनुभवी हो, दूसरा कोई कैसे जाने। जब तक तुम बच्चों के संग में ना आए तब तक वह कैसे समझ सकता है। अब तुम जानते हो भक्ति मार्ग में भी बंधन है, याद तब करते हैं जब के रावण रूपी पांच विकारों के बंधन में। उन्होंने तो शंकर को भगवान दिखाई दिया है। तो शंकर अगर भगवान है तो याद क्यों करता है? याद करता है इससे क्या साबित हुआ कि जब तक याद का पुरुषार्थ है परमात्मा को याद करता है, परमात्मा तो है निर्बंधन मुक्ति जीवन मुक्ति दाता सदाशिव। तो जरूर पांच विकारों रूपी रावण के बंधन में है, बाप का नाम ही है लिबरेटर। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है, लिबरेट करते हैं मनुष्यों को, मनुष्यों को ही लिबरेट किया जाता है दुख से माया के बंधन से, लिबरेट करने आते हैं। फिर गाइड भी, गीता में भी है मच्छरों से डर सबको वापस ले जाते, मच्छरों से डर क्यों कहा है? शेरों में कल क्यों नहीं कहा, हाथियों में कल क्यों नहीं कहा? मच्छरों सदस्य इसलिए कहा कि मच्छरों की जैसे कोई कीमत ही नहीं होती। इतने ढेर के ढेर झुंड निकलते हैं, रोज पतंगों में आके के निकलते हैं, रोज मरते रहते माना, वापस कब ले जाएंगे? तो जरूर विनाश होगा। तो गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर द्वारा विनाश करा दे, पर जो स्थापना करते हैं उन द्वारा ही पालना भी होती है क्या? ऐसे नहीं जो विनाश करते हैं उनके द्वारा पालना होती है। जो कंस्ट्रक्शन करेगा वो ही पालना करेगा। डिस्ट्रक्शन करने वाले पालना करने के अधिकारी नहीं। अभी तुम तैयार हो रहे हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस बात के लिए, नई दुनिया की पालना करने के लिए तुम तैयार हो रहे हो। देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ करके भाग जाते हैं, वो बुद्धि से तोड़ने का प्रयास नहीं करते। और तुम तो गृहस्थ व्यवहार में रहते राज्य सीखते हो दूसरा देश। जनक का भी मिसाल, वो जनक जाकर फिर अनजनक बना। हनुमान बाद वाला अनुकरण करने वाले को भी अनु कहा जाता है। बहुत बच्चे कहते हैं जनक मिसल हम अपनी राजधानी में रहते ज्ञान उठाएंगे, अपने घर का तो हर एक राजा होता है, मालिक को ही राजा कहा जाता है। अपने घर के तो सब मालिक थे, बाप है, उनकी स्त्री बच्चे आदि हैं, तो वो हो गई हद की रचना। तो बेहद की रचना का भी कोई मालिक होगा। वो बेहद का क्रिएटर क्रिएट भी करते हैं, पालना भी करते हैं। हद के क्रिएटर जो होते हैं पालना करते हैं, क्रिएशन करते हैं, बाकी संहार नहीं कर सकते। और ये बेहद का क्रिएटर इसमें क्या खासियत? एक स्थापना भी करता है, पालना भी करता है, और पालना करने से पहले पहले क्योंकि शक्ति को तो वृद्धि को पाना ही है, पैदा ही करते रहते हैं, संहार कोई नहीं कर सकते। चाहे इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, सब अपने अपने धर्म की रचना करते, लेकिन संघार कोई नहीं करते। फिर तो बेहद का बाप ही आते हैं जो नई रचना रचते हैं और पुरानी का विनाश कराते। और धर्म पिता नई नई धारणाओं की स्थापना तो करते हैं, नए धर्म तो स्थापन करते हैं, लेकिन पुराने धर्मों का, जर्जरीभूत धर्मों का विनाश नहीं करते। जैसे विष का भरा हुआ घड़ा रखा हो और उसमें कोई एक घड़ा दूध उड़ेल दे तो दूध मिक्स हो जाने से क्या होगा? क्या अमृत बनेगा? नहीं बनेगा। एक बूंद भी अगर विष की रह जाएगी तो भी सारा दूध विधि ही बन जाएगा। तो जब तक पुरानी शक्ति का संहार नहीं हुआ तब तक नई शक्ति की प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। नई शक्ति की स्थापना और पुरानी का विनाश तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता परम पिता परमात्मा ही करेंगे। इन बातों को तुम बच्चे अच्छी रीति समझते हो। बातें तो बड़ी सहज है, नाम ही रखा हुआ है सहज योग वाह। भारत का ज्ञान व योग नामी ग्रामी है और है भी गीता, परंतु उसमें कृष्ण का नाम डालने से किसका भी भाव नहीं बैठता है। भाव कब बैठे? जब साकार के स्थान पर निराकारी स्टेज में रहने वाले का नाम रहा होता। कृष्ण को हिंदू पूजते लेकिन निराकार को तो सब मानते हैं। आर्य समाज आदि देवताओं के चित्रों को मानते नहीं है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो आर्य समाजी होंगे या आर्य समाज की शूटिंग करने वाले होंगे वो शंकर आदि देवताओं को मानेंगे नहीं। तो समझते हैं कि ये सब कल्पना है। हरेक की अपनी अपनी मत, एक ही मत न मिलती है दूसरे से। 550 करोड़ मनुष्यों की अपनी अपनी मत है, अपना मतभेद हो जाता है। पांच विकार सभी में हैं, तो सबकी मत भी आसुरी हो गई। आसुरी मत और दैवी मत की पहचान क्या बताई? दैवी मत और आसुरी मत, दैवी मत एक मत होगी और आसुरी मत भिन्न भिन्न मतें होंगी। तो बाप फिर दैवी मत देते जिससे तुम सदैव हर्षित रहेंगे। माता पिता से ही नई शक्ति की रचना होती है, ये तो सब जानते हैं। हमको खुदा ने पैदा किया, लेकिन पैदाइश कब हो? क्रिएशन तब ही हो सकती है, रचना तब ही रची जा सकती है जब दो हो। सिर्फ खुदा से पैदाइश थोड़ी हो जाती है। अभी तुम समझते हो खुदा कैसे आकर के नई सृष्टि रचते हैं। नई सृष्टि एडाप्ट करते हैं, फिर तो पुराने ही है। लेकिन पुरानी दुनिया की आत्माओं को, मनुष्य आत्माओं को एडाप्ट कर अपना बनाते हैं तो माता पिता तो जरूर है। पिता माता द्वारा एडाप्ट करते हैं और बाप तो फिर खुद ही माता पिता बनते हैं। ऐसे नहीं कि खुद ही पूज्य और पुजारी बनते हैं, आप तो खुद ही है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? खुदा। मानव जिसमें इतनी खुदी भरी हुई हो इन द्वारा एडाप्ट करते हैं। ये तो बड़ी माता हो गई। इन द्वारा एडाप्ट करते हैं, फिर यह बड़ी माता हो गई। शब्द तो बहुवचन हो गया और यह एक वचन हो गया। इसके लिए बोला, इन द्वारा अडाप्ट करते हैं। तो जिनके द्वारा अडाप्ट करते हैं वो कौन कौन हुए? आदि माता भी है, तो उसका टाइटल धारण करने वाला ब्रह्मा भी है, तो इन द्वारा अडाप्ट करते हैं तो ये बड़ी माता हो गई। फिर पहले नंबर में सरस्वती को अडाप्ट किए हैं, फिर आपने इनमें प्रवेश किया है ना, इनमें प्रवेश किया है सरस्वती में नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा ये मम्मा तो अडॉप्टेड है, तुम्हारे लिए तो माता पिता है, हमारे लिए पति भी हुआ तो पिता भी हुआ। हम पिता परवरिश कर अपनी बन्नी भी मुझे बनाया है, बन्नी कैसे बनाया, परवरिश करके और बच्चा भी बनाया, तो ये बड़ी रमणीक बातें हैं। जो सन्मुख सुनने की है, इनडायरेक्ट सुनने से समझ में नहीं आवेगी, तुम्हारे में भी नंबर वार समझते। अगर सभी समझते हो तो फिर दूसरों को भी समझा दे, समझे हुए की निशानी, और दूसरों को भी समझा देगा। अगर दूसरों को नहीं समझा सकता है इसका मतलब खुद अभी पूरा समझा नहीं है, समझा नहीं सकते हैं तो गोया कुछ भी समझा नहीं। जड़ बीज से झाड़ कैसे पैदा होता है ये तो कोई भी झट बतला सकता है, लेकिन ये बीज कैसा है? ये बीज तो है चैतन्य, चैतन्य अर्थात बोलता चलता, और झाड़ भी, झाड़ भी चैतन्य है मनुष्य शक्ति का। इस देहद के झाड़ का जब तक बाप ना आकर के समझाए तब तक कोई समझ नहीं सकता। फिर चैतन्य देहद के मनुष्य शक्ति रूपी झाड़ का बाप कौन है? बीज कहो बाप कहो वो कौन है? तो कहाँ से आता है? आकर समझाए, आता कहाँ से? वो तो इसी शक्ति पर होता है, होता तो है इसी शक्ति पर, लेकिन पहचानता, पहचानता कोई नहीं। पहचान कब होती है? जब सुप्रीम को ला करके उसमें प्रवेश करके दोनों बेहद के बाप की पहचान देता है। दो बेहद के बाप कौन कौन से? एक आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्यों का बाप। जानते हो हम बाप से राजयोग सीख और बाप से वर्षा ले रहे, तो बुद्धि में होना चाहिए। ये डबल संबंध है, बाप सिंगल संबंध रहता है। अलौकिक बाप को याद नहीं करते हैं, कहाँ सत्युग में पारलौकिक बाप को याद नहीं करते हैं, और यहाँ इस दुनिया में लौकिक बाप को भी याद करते हैं और पारलौकिक बाप को भी याद करते हैं। यहाँ इस दुनिया में ही हुआ सब है बंधन, जिससे दुख मिलता है। तुम जानते हो हम इस समय उस बंधन में भी हैं। कौन से बंधन में? लौकिक बाप के बंधन में और पारलौकिक बाप के संबंध में, पिता के संबंध में अब आए तो बंधन से छूटने के लिए, कौन से बंधन से छूटने के लिए? लौकिक बाप के बंधन से छूटने के लिए। आजकल तो कितनी मतें हो गई, आपस में लड़ते झगड़ते रहते, पानी के लिए धरती के लिए भी लड़ते रहते हैं क्या? पानी के लिए कौन लड़ते झगड़ते रहते हैं? दुनिया वाले के, ब्राह्मणों की दुनिया में भी, ब्राह्मणों की दुनिया में भी ज्ञान जल के लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं। क्या कहते हैं, हमारी मुरली क्यों करते हो, हमारे चित्र हमारे लेते थे तो तुम्हारा क्या कनेक्शन? अन्य के लिए भी लड़ते झगड़ते रहते हैं, ये हमारी हद में है, इसमें तुम क्यों आए? ये तो तुम्हारी हद में नहीं है, बिल्कुल ही हद में आ गए। ये भूल गए हैं कि भारतवासी पतिक में बेहद के मालिक, जो मालिक थे वो ही फिर भूल जाते हैं, और भूलना भी जरूर है। जब भूले तभी फिर बाप आकर के समझाए, वहाँ उस दुनिया में है बंधन और यहाँ मात पिता से है संबंध, से है मात पिता से है संबंध। अगर मात पिता है तो सुख का संबंध जरूर बात होगा। जानते हो हम श्रीमत पर चल अथाह सुख का वर्षा ले रहे, बाप कहते हैं मैं तुमको सुख का वर्षा देता हूँ, मैं दुख का वर्षा तुमको नहीं देता हूँ। दुख का वर्षा रावण देता है, तो बताओ फिर श्राप कौन देते हैं? माया रावण। श्राप में है दुख और वर्षे में तो सुख होता है। मनुष्य ये नहीं जानते कि मनुष्य को दुख का वर्षा कौन देते, कौन देते हैं? अनेक मत वाला रावण, अनेक सिरों वाला, क्योंकि सिर के अंदर ही मत रहती है, हर एक सिर के अंदर अपनी अपनी अलग अलग मत। बात आकर सती की स्थापन करते तो जरूर सुख का ही वर्षा देंगे। दुख का वर्षा देने वाला बाप को थोड़े ही कहेंगे, दुख तो दुश्मन देते हैं, बाप कैसे देगा? परंतु ये बातें कोई समझते नहीं। क्या बातें न समझने वाले क्या कहते हैं, बाप ही सुख देता है, बाप ही दुख देता है, भगवान ही सुख दुख देता है। वास्तव में ये शूटिंग भी कहाँ होती है कहने वालों की, संगम युग पर ही जो बाप को पूरा नहीं पहचानते हैं वो ही कहते हैं कि बाप सुख भी देता है और बाप दुख भी देता है। तो देखो कहाँ की बातें कहाँ ले गई। कहते हैं लंका लूटी जाती है, लंका को लूट कर सोना ले आते, अब सोना कोई सिलोन में तो रखा नहीं है ना, मानो सच्चाई सच्ची सच्ची हीरे जवाहरात जैसी आत्माएं हैं वो अभी माया रावण के कब्जे में आ गई है। खाना तो मिलता है खानियों से, और खान कहाँ होती है? आकाश में या धरणी में? धरती में। तो धरणी में खान है सच्चाई की, धरणी मन, धरणी मन धारणा शक्ति सब है। दुर्योधन दुशासन और कन्या माताएं हैं धरणी धारणा शक्ति। सोना ले आते हैं, लंका लूटी जाती है, सोना तो मिलता ही है खानियों की, खाने होती है धरणी में। कहाँ कहाँ नदियों से भी मिलता है सोना, विमल ज्ञान गंगा ज्ञान नदी। बच्चे जान गए हैं ये अनादि वर्ल्ड ड्रामा है, तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बैठे, जो नहीं समझते हैं और नहीं समझा सकते हैं तो वो क्या पढ़ पाएंगे, क्या समझना और क्या समझाना। जो भी शास्त्रों की बातें बाबा बोलते हैं मुरलियों में, तो जरूर बाबा तो शास्त्रों से सार की बात सुनाते हैं ना, जिन बातों में कोई सार है वो ही शास्त्रों की बातें उठाते हैं, बाकी निसार बातों को छोड़ देते हैं। तो उन सार स्वरूप बातों को नंबर वार बच्चे समझते हैं, समझने वाले दूसरों को भी समझा सकते हैं, वो ही पद पाएंगे। न समझा पाने वाले पढ़े हुए के आगे भरी दोएंगे। राजा रानी और प्रजा में फर्क तो होता है ना, जैसे ये मम्मा बाबा जाकर उन पद पाते हैं, तुम भी पुरुषार्थ करके इतना पढ़ो जो मम्मा बाबा के तख्त पर बैठे। तो उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ कर लिया कि ब्रह्मा सरस्वती के तख्त पर जाए विराजे। तो अच्छा हुआ ना पुरुषार्थ, क्या तुम भी पुरुषार्थ कर इतना पढ़ो जो मम्मा बाबा के तख्त पर बैठो, विजयमाला का दाना बनो। मम्मा बाबा के तख्त पर बैठना माना विजयमाला का दाना बनना। तो मम्मा बाबा यहाँ ब्रह्मा सरस्वती के लिए नहीं कहा गया, और न ब्रह्मा सरस्वती से कोई वर्षा मिलता है, ये तो आने वाले भविष्य पार्ट के बारे में इशारा दिया। जयमाला का दाना बनो, टेम्पटेशन बहुत दी जाती है, राजयोग है ना, तुम राजयोग से राजा ही को प्राप्त कर लो, कम से कम पुरुषार्थ संसार प्रजा तो बनेंगे। एक बार इस ज्ञान में आ गया, बाप से थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में तो आई जाएंगे। स्वर्ग में आना या प्रजा बन जाना ये कोई बड़ा पुरुषार्थ नहीं है, हमेशा कहा जाता है फालो फादर, तुम बच्चे हो ना, वो फादर और फिर ये है फादर। यहाँ फिर मदर भी है, यहाँ इस शक्ति पर ही परमात्मा आकर के मदर और फादर हाँ बनते हैं। यहाँ फिर मदर भी कहा जाता है, और फादर फिर यह फादर, इस पर शिक्षा रखिए। हुआ सादर मन पारलौकिक परम पिता परमात्मा की पार्ट की तरफ इशारा किया। फिर यह है सादर, यह है कौन है प्रजापिता, उसके साथ से ब्रह्म बड़ी मत, तो यहाँ फिर मदर भी है। वो भी नंबर वन फॉलो कर रही है। अभी बोला यहाँ फिर मदर भी है, तो यहाँ है तो यह कहना चाहिए, फिर वह क्यों कह दिया। वो भी नंबर वन फॉलो कर रही है। हो भाई बहन प्रतिशती, ये किसी कहा तुम हो भाई बहन, बाप तो एक होना चाहिए। जो भाई बहन है उनका बाप तो एक होना चाहिए। ओ गॉड फादर सब कहते हैं, तो सब भाई बहन हो गए, तो किस हिसाब से हो गए। दूर सब भाई बहनों का एक माता पिता चाहिए, जिसको दूसरे धर्म वाले भी एडम ईव या आदम हव्वा कहते हैं, और जाति कोई संबंध नहीं, भाई बहन बस, और उनका बाप दादा। भाई बहने तो बहुत है, बाप एक है दादा भी एक है, एक प्रजापिता ब्रह्म है, उनसे फिर रचना रची जाती है। तुम भाई बहन ही पद पाते हो नंबर वार पुरुषार्थम का, बाकी तो जाकर के अपने अपने झाड़ में लटकेंगे। किसी के लिए लटकना बताई दिया। तुम भाई बहन पद पाते हो नंबर वार पुरुषार्थम का, तुम लटकने वाले नहीं हो। देह और देह के संबंधों में लटकने वाले नहीं हो। बाकी जो दूसरे धर्म के हैं वो जाकर अपने अपने झाड़ में लटकेंगे, उनका भी ठिकाना तो है ना। तुम्हारा ठिकाना कहाँ है? तुम्हारा ठिकाना है बाप की गोद, माता पिता की गोद, और उनका भी अपना अपना ठिकाना है जहाँ वो लटकते हैं। आप तो फिर नंबर बार आते हैं, ऐसे नहीं लटके ही रहेंगे, उनको भी हाँ नंबर बार फिर आना तो जरूर पड़ेगा। यहाँ है जीवन बंद, आत्माएं वहां से पहले पहले सुख में आती है, इसलिए पहले जीवन मुक्ति होती है, बाद में होता है जीवन बंद। पहले पहले होती है स्वर्ग में भारतवासियों की जीवन मुक्ति, भारतवासियों की जीवन मुक्ति कोई नरक में नहीं होती। दूसरे धर्म वालों की जीवन मुक्ति कहाँ होती है, स्वर्ग में या नरक में? उनकी नरक में एक जन्म के लिए जीवन मुक्ति होती है, और भारतवासियों की अनेक जन्मों के लिए स्वर्ग में जीवन मुक्ति होती है। जीवन मुक्ति माना जीवन में रहते हुए भी दुख न हो, सुख महसूस हो। तो द्वापर कलयुग में ये कैसे हो सकता है कि दुख महसूस न हो और सुखी ही महसूस हो? द्वापर कलयुग में तो गर्भ से जन्म मिलता है, गर्भ जेल से जब जन्म मिलेगा तो जन्म ही जिसका जेल में होगा, दुख की दुनिया में होगा, तो उसके दुख कैसे नहीं मिलेगा? तो दूसरे धर्म वालों को एक जन्म के लिए जीवन मुक्ति कैसे मिलती है? हाँ कैसे? कैसे नहीं भोगना पड़ता। हाँ, जो पवित्र आत्मा परम धाम से ऊपर से आती है वो प्रवेश करती है, और प्रवेश करके वो जिस शरीर में प्रवेश करती है वो शरीरधारी तमो प्रधान होता है। आत्मा प्रवेश करने वाली तत्व प्रधान होती है, इसलिए क्रैश की जैसे आत्मा ने प्रवेश किया तो जो ऊपर से आने वाली आत्मा है वो क्रास का दुख नहीं भोगती। क्रास का दुख कौन भोगता है? पुरानी मनुष्य आत्मा, दिस इज क्रैश। तो कितनी अच्छी अच्छी बातें बाप सुनाते हैं। उनका है अल्पकाल का दुख, एक जीवन का जीवन मुक्ति, और तुम्हारी है अनेक जीवन की जीवन मुक्ति। तो मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर, दूसरा न कोई। वो जिस झाड़ में लटकते हैं वो सर्वोत्तम टीचर नहीं है, और तुम्हारा तो सर्वोत्तम टीचर है। कन्याएं कहेंगी मेरा तो एक शिव बाबा। कन्याओं को इसमें पूरा अटेंशन लेना है। किसमें? नहीं, कन्याओं को इस बात में पूरा अटेंशन देना, मेरा तो एक दूसरा न कोई। इस गवर्नमेंट के हो गए तो फिर ईश्वरीय सर्विस में लग जाते क्या? अगर इस गवर्नमेंट के बन गए तो, अगर इस गवर्नमेंट के, इस सरकार के नहीं बने तो आखिरी सर्विस में लगेंगे। जो इस सर्विस में लग जाते हैं ईश्वरीय सेवा में, उनकी फिर आखिरी सर्विस छूट पड़ेगी क्या? हाँ, ये भी पहचान बताइए। पक्की सर्विस से बोलती क्या? ईश्वरीय सेवा में जो लग गए दिलो जान से, उनका रिजल्ट एक दिन ये जरूर आएगा क्या, कि उनकी आखिरी सर्विस टूट पड़ेगी। हर एक के कर्म बंधन अनुसार राय दी जाती है, तो ऐसे नहीं कि बाबा ने कह दिया तो अच्छा छोड़ दो। कर्म बंधन भी देखा जाता है, ऐसे नहीं कोई कुमार है उसके वृद्ध माँ बाप हैं जो ज्ञान में नहीं चलते हैं, बड़ी बहन है वो ज्ञान में नहीं चलती है, और बाबा राय दे देंगे तुम सर्विस छोड़ दो। कर्म बंधन के अनुसार राय दी जाती है, देखा जाता है निकल सकते हैं व नहीं निकल सकते हैं। अच्छे श्रुद बुद्धि हैं तो फिर ऑन गॉडली सर्विस ओनली हो जाती है। डल बुद्धि है तो ओनली गॉड सर्विस नहीं हो सकते, फिर आधा उधर भी करना पड़े सर्विस और आधी इधर भी सर्विस करनी पड़े। तुम बच्चों की है गॉडली सर्विस और उन बच्चों की है, तुम्हारी तो गॉडली सर्विस है तो उनकी क्या है? उनकी है डागली सर्विस, ईश्वरीय सेवा और आखिरी सेवा। तुम बच्चों की है गॉडली सर्विस, उनकी डागली सर्विस, विकारी सर्विस और निर्विकारी बनाने की सर्विस। सेना है, गार्ड तुमको माया से युद्ध करना सिखलाते, क्या मनुष्य नहीं सिखलाते? गार्ड तुमको माया से युद्ध करना सिखलाते हैं। रावण पुराना दुश्मन सबसे जास्ती है, ये सिर्फ तुम ही जानते हो कि सबसे पुराना दुश्मन कौन है और कैसे है। तो पुराने दुश्मन से ही गिराया है, उसी ने गिराया है। अभी हम उस पर विजय पाकर हीरे जैसा बनेंगे। तो को हिम्मत वो नशा रहना चाहिए, मनुष्य तो लड़ते रहते हैं सब जगह, देखो झगड़ा ही झगड़ा है, हमारा कोई से झगड़ा नहीं है। अभी तो कहा रावण पुराना दुश्मन है, है? अच्छा आह्वान करते हो, बाप कैसे मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, माया का वार नहीं लगेगा, स्वर से को याद करो। ये भी किसको सुनाना पड़े ना कि बाप से क्या वर्षा मिलता है, बाप का परिचय दे, उनसे बुद्धियोग लगाना है, परिचय देंगे है? बाप का परिचय देंगे कि वो बिंदी है, वो तो बिंदी से वर्षा मिलता है, स्वर्ग का वर्षा, स्वर्ग के सुख घनेरे मिलेंगे तो कोई समझेगा नहीं, कब समझेगा? जब बताएंगे कि वो हमारा माता पिता है, माता पिता से सुख घनेरे मिलते हैं और यहाँ इसी जन्म में मिलेंगे, भविष्य में जिनको वो सुख घनेरे मिलेंगे उनकी ऐसी स्टेज हो जाएगी कि कैसी भी परिस्थिति में विनाश की भयंकर समस्याओं के बीच ही अपने को सुख में महसूस करेंगे, दुख महसूस नहीं करेंगे। तो ऐसे बाप का परिचय दे, उनसे बुद्धियोग लगाना है, वो हमारा माता पिता है, शिव बाबा है, तो बताओ तुम्हारी माता कौन सी है। ये भी कितनी गुहे बात है, कहेंगे मम्मा हमारी माता सरस्वती, तो पहले तो है नहीं, अगर कहें कि है हमारी माता तो ब्रह्मा के साथ उसका क्या संबंध था, बेटी का, तो बेटी और बाप का संबंध हुआ तो माता पिता का संबंध कैसे कहेंगे। फिर कहेंगे कि ब्रह्मा हमारी माता है, अगर ब्रह्मा तुम्हारी माता है तो वो कहाँ है, माता तो इसे सृष्टि पर चाहिए, तो कहेंगे सूक्ष्म मतन में। सूक्ष्म मतन में ब्रह्मा माता है और तुम यहाँ पैदा हो गए, ब्राह्मण साकार है तो ब्राह्मणों के माता पिता भी साकार में होने चाहिए, तो फिर उनको समझाना पड़े कि वही ब्रह्मा सरस्वती जो बाप और बेटी के संबंध में थे, वही ब्रह्मा सरस्वती कोई ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश करके फिर से माता पिता का पाठ बजाते। ये भी कितनी गुहे बातें हैं, तुम पूछते हो आत्मा का बाप कौन है, वो भी लिख देंगे परमात्मा है। तुम जब पूछते हो कि आत्मा का बाप कौन है तो कट से बताएंगे परमात्मा है। अच्छा तो फिर माता कहाँ है, जब परमात्मा बिंदु है तो माता कहाँ है, तो बिंदु के साथ तो माता का कनेक्शन ही नहीं जुड़ता। बिंदु बिंदु आत्माओं का, बिंदु बाप के साथ सिर्फ बाप और बच्चों का कनेक्शन है, वही संबंध साबित होता है, बाप और बेटी का भी संबंध नहीं, बाप के सब बच्चे हैं, आत्म के बाप के बच्चियां भी नहीं। तो बच्चे बच्चियां कब बनते हैं, जब वो बाप भी साकार में माता पिता बने, स्त्री पुरुष के रूप में चोला धारण करे
तो जरूर कोई रुद्रमाला के दो मणके हैं, जो भले चोले से स्त्री हो या चोले से पुरुष हो, लेकिन बौद्धिक स्टेज से दोनों आत्मिक स्टेज में रहने वाले होंगे। कौन? मातृका। तो रुद्रमाला के मणके डायरेक्ट रुद्र बाप से वरदान लेने वाले बच्चे हुए, राजा ही का वरदान, रानी का भी वरदान नहीं, कौन सा वरदान? राजा ही का वरदान। तो वो बच्चे चाहे स्त्री चोले में हो चाहे पुरुष चोले में हो, चाहे बहन के रूप में हो चाहे भाई के रूप में हो, लेकिन स्वभाव संस्कार से सब मेल है, इसलिए बाप से पूरा वर्षा लेने के हकदार है, राजा ही का वर्षा। तो उनसे जब पूछेंगे कि आत्मा का बाप कौन सा है, तो वो भी लिख देंगे परमात्मा है। अच्छा माता कहाँ है? माता बिगड़ बच्चों को कैसे रखेंगे? तो फिर जगदम्बा तरफ चले जाएंगे। अच्छा जगदम्बा को कैसे रचा? फिर ये भी किसको पता नहीं, सारे जगत की अम्बा है तो उसको रचा कैसे? तुम जानते हो ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, वो भी मुखवंशावली है, मुख से पैदा हुई है ब्रह्मा के मुख से, रचयिता तो बाप ही। अच्छा मीठे मीठे सिकिंदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, ओम शांति।